الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह सूरह बनी इसराइल की आगे की आयात और उनका तर्जुमा और तफसीर वगैरह पढ़ेंगे मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 5 से। पिछली आयात जो हमने मुकम्मल कर ली थी पिछली क्लास में, उसमें आखिरी जो मौजू था ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो इसमें औलाद के बारे में लिखा है, और किसी ने क्लास में सवाल भी किया था कि अगर औलाद नेक ना बनी तो उसके वालिदैन के ऊपर उसका कसूर होगा या नहीं होगा। तो इसका सादा और सिंपल जवाब यही है कि अगर वालिदैन ने उस औलाद को नेकी के रास्ते पर डालने की कोशिश करी होगी तो उनका उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब आगे औलाद बालिग होने के बाद वो कौन सा वाला रास्ता इख्तियार करती है, नेकी वाला या बदी वाला, ये उसका अपना फेल होगा, उसका अपना अमल होगा, उसका अपना इख्तियार होगा। ठीक है, वालिदैन ने अपना काम कर दिया, वालिदैन के जिम्मे जो जो फर्ज था, वालिदैन की जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि वो कोशिश करते, कोशिश करते। ठीक है, उन्होंने कोशिश कर ली, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब उस कोशिश का नतीजा क्या निकला कि औलाद जो है वो उस कोशिश के नतीजे में नेकी के रास्ते पर आई या नहीं आई, ये नतीजा है, ये रिजल्ट है। ठीक है, तो रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो हमारे इख्तियार में नहीं होते, अल्लाह ताला ने हमें रिजल्ट्स के ऊपर, नताइज के ऊपर कुदरत नहीं दी है, ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है। ठीक है, तो यही वाला उसूल जो है वो औलाद की परवरिश में भी अप्लाई होता है, और यही वाला उसूल जो है वो सारे मामलात में अप्लाई होता है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है कि एक बंदे ने मेहनत करी थी लेकिन उसको जो है ना वो मेहनत करने के बावजूद जो है क्योंकि नतायज अच्छे नहीं निकले इस वजह से इसको सजा हो जाएगी, इसको अजाब हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 457। ठीक है, ये जिल नंबर 5 का, और जो जो मेरे पास प्रिंटिंग है उसके अंदर पेज नंबर 457 बनता है। तो सूरह बनी इसराइल खोल रहे हैं, उसके अंदर आयत नंबर 16 और 17 के ऊपर आज हम हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हत्ता के अपनी औलाद के साथ क्या मामला होगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ में तो सिर्फ अल्लाह ताला ने हमारा इख्तियार दिया है और बस। ठीक है, और कुदरतन आगे वाली कुछ आयात आएंगी जिसके अंदर इसके ऊपर मजीद अल्लाह ताला बात फरमाएंगे और हम इंशाल्लाह उसकी तफसीर पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन, और जब हमने चाहा, हमने इरादा किया, उर्दू में हम इसी लफ्ज को इरादा इस्तेमाल करते हैं, तो जब हमने इरादा किया अन के नुहलिका क़रयतन कि हम एक बस्ती देश बस्ती वालों को, करिया कहते हैं छोटी बस्ती जिसको अंग्रेजी में टाउन भी कहते हैं, मदीना का जो लफ्ज है ये बड़े शहर के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, बड़ी बस्ती जो कि एक शहर की सूरत अख्तियार कर जाती है, लेकिन अगर वो छोटी हो तो उसको करिया कहा जाता है, और ये जाहिर है हर जमाने के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। आज जो है वो जिसको करिया कहा जाता है आज के दौर में, वो पुराने दौर के बहुत बड़े शहरों से भी ज्यादा बड़ी है, आज का करिया पुराने शहरों से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन आज का जो करिया है वो आज के शहरों के मुकाबले में छोटा है। ठीक है, इस वजह से उसको करिया कहते हैं। तो बहरहाल जब हमने इरादा किया कि हम हलाक करें किसी करिया को, अमरना मुतरफी हा, तो हमने हुक्म भेज दिया, हमने हुक्म कर दिया मुतरफी हा, ठीक है, मुतरफी मुतरफी हा, ठीक है। मुतरफुन किसको कहते हैं? मुतरफुन ऐसे शख्स को कहते हैं या ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो कि ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो, ठीक है, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो, लग्जरी, ठीक है। लग्जरी किस चीज को कहते हैं? ऐश किसको कहते हैं? मतलब जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं वो भी पूरी हो रही हो, और बुनियादी जरूरतों के ऊपर आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हो, और अच्छी खासी जब ख्वाहिशात पूरी हो रही होती है ना, तो उनको उसको फिर लग्जरी कहते हैं, ठीक है। जैसे आज के दौर में आपके पास एक सवारी के लिए गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी जो है वो एक जरूरत है जिसको सवारी कहते हैं, ठीक है, सवारी जरूरतों में से एक है। आप डिपेंड करता है, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास सुजुकी की एक नॉर्मल सी गाड़ी है, आप बाहर रहते हैं तो आपके पास जो है वो होंडा सिविक है या होंडा एकॉर्ड है, ठीक है। तो ये लग्जरी कार्स में नहीं आती हैं, ठीक, लेकिन लग्जरी कार्स में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, और अगर आप सऊदी अरब में रियाज में रहते हो तो फिर दुनिया की जो लग्जरी तरीन गाड़ी होगी वो आपको यहाँ पे मौजूद होगी। अभी खबर की हेडलाइन कहीं पे नजर आई थी कि जी सऊदी अरब की जो है फुटबॉल टीम थी ना, तो उसने पहले मैच में अर्जेंटीना को हरा दिया था, ठीक है। तो एक फुटबॉल की टीम में 26 प्लेयर्स होते हैं। अब वो पता नहीं खबर कितनी सही थी, लेकिन गलत भी नहीं 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 लगती। तो खबर बेस के लिए थी कि जो 26 प्लेयर्स हैं ना, तो शहजादे साहब ने 26 के 26 प्लेयर्स को रोल्स रॉयस गाड़ी इनाम में दी। किस बात के ऊपर? सिर्फ एक मैच जीतने के ऊपर। वर्ल्ड कप नहीं जीते, ठीक है, फाइनल राउंड में नहीं पहुंचे, सिर्फ एक मैच जीते, ठीक है। हर एक, अच्छा, जो मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो 26 के 26 नहीं खेलते मैदान में, ये तो रिजर्व्स होते हैं। असल मैदान में तो पता नहीं मुझे के पता नहीं 11 प्लेयर्स होते हैं या 16 प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल के, ठीक है, आपको पता हो तो बता दिएगा। तो बाकी जो है वो तो रिजर्व्स के अंदर होते हैं, लेकिन उनको भी रोल्स रॉयस गाड़ी जो होती है वो दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी होती है, सबसे ज्यादा महंगी, ठीक है। और ये वाकई, यानी जिसको कहते हैं ना, बादशाहों और शहजादों के पास ही होती है और किसी के पास नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ क्रिकेट में तो 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि हमने हुक्म भेज दिया उसके ऐश करने वालों को, लग्जरी लाइफ गुजारने वालों को, फसकू, बस उन्होंने फिस्क किया। फिस्क कहते हैं कि खुलकर गुनाह करना, खुलकर गुनाह करना, ठीक है, यानी खाली गुनाह नहीं करना कि भाई वो छुप के गुनाह कर लिया, कि दाएं हाथ को खबर नहीं हुई बाएं हाथ ने क्या किया, बाएं हाथ को खबर नहीं हुई दाएं हाथ ने क्या किया, उसको फिस्क नहीं कहते। फिस्क कहते हैं जब इंसान दूसरों के सामने गुनाह करे, या गुनाह करे तो अकेले में, लेकिन फिर दूसरों को बताए, दिखाए। इसी वजह से दाढ़ी मुंडाना जो होता है, यानी शेव कर लेना जो है दाढ़ी को, ये फिस्क कहलाता है, और उसको करने वालों को फासिक कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया उसके चेहरे को देख रही होती है कि उसने ये गुनाह किया है, ठीक है। छुपा नहीं रहा होता ना, वो अपने चिन को जो है वो छुपा के तो नहीं फिर रहा होता, सारी दुनिया को दिखा रहा होता है ना। तो फसकू फीहा, बस उन्होंने फिस्क किया उसके अंदर, किसके अंदर? करियाह के अंदर, बस्ती के अंदर। फहक्का अलैहिल क़ौलु, बस मुहक्कक हो गया, साबित हो गया, अलैहा उसके ऊपर, यानी उस बस्ती के ऊपर, अल कौल, ठीक है, यानी हमारी बात जो थी ना, अल कौल, अल कौल, अल्लाह ताला की जो कौल है, अल्लाह ताला का जो हुक्म का जो फैसला है, बल्कि फैसला, ठीक है, वो उनके ऊपर साबित हो गया। क्या मतलब? हम उर्दू जुबान में इसको कहते हैं हुज्जत तमाम हो गई, हुज्जत तमाम हो गई, ठीक है। फहक्क अलैहिल कौलु फदम्मरनाहा तदमीरा, बस उसके बाद फिर हमने उखाड़ मारा उनको उठाकर, ठीक है, यानी हमने बेसिकली उनको हलाक कर दिया। दम्बरा युदम्बिरु तदमीरन, तदमीरन हलाक कर दिया, हलाक करना। ठीक है, अब इसकी तफसीर काफी है तो वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो तर्जुमा खाली कर रहे हैं। वकम अहलकना मिनल कुरूनी मिन बादे नूह, और कितने ही हलाक कर दिए हमने कुरून, ठीक है, कर्न यानी जो जो जेनरेशंस, ठीक है, जो नस्लें कितनी ही हमने हलाक कर दी, मिम बाद नूहन, नूह अलैहिस्सलाम के बाद। जी इन्होंने लिखा है डायरेक्ट मैसेज में कि इसी तरह बेपर्दगी औरतों का फिस्क है। जी बेपर्दगी का तो मतलब ये है कि किसी दूसरे के सामने जो है वो पर्दे के बगैर जाना, ठीक है, तो ये औरत का फिस्क होता है, औरत का फिस्क होता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम अपने जो जो चीज जाहिर होती है ना तुम्हारी, ठीक है, उसको जो है वो दूसरे दूसरों से छुपाओ, और गैर महरम, इसका इसकी तफसीर है कि गैर महरमों से छुपाओ। ठीक है, तो जब औरत जो है वो अपना चेहरा खोल करके गैर महरमों के सामने जाती है, या जो है वो ऐसे कपड़ों के अंदर जाती है जिस कपड़ों के अंदर वो अपने घर में रहती है, ठीक है, तो ये जो कपड़े होते हैं ना, ये क्यों आप रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनती हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे कपड़े, शलवार कुर्ता और या उस किस्म की और जो कपड़े होते हैं, ठीक है ना, ये रंग क्यों डाले जाते हैं इन कपड़ों के अंदर, इनको बिल्कुल सफेद क्यों नहीं बनाया जाता, इनको बिल्कुल ग्रे क्यों नहीं बनाया जाता, इनको बिल्कुल ब्लैक क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि सिर्फ एक कलर जो होता है ना वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, सिवाय इसके कि वो एक कलर ही इतना ज्यादा भड़कीला हो, पिंक फॉर एग्जाम्पल, बेबी पिंक टाइप का कोई कलर हो, तो वो एक कलर ही दूसरों को अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। लेकिन औरतें ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती है ना, बहुत सारे उसमें डिजाइन और कलर और फलाना, तो दूसरों की निगाहों को अपनी तरफ खींचना। अब ये वाला जो कपड़ा पहन करके आप बेशक अपने ऊपर दुपट्टा लपेट लें, बेशक अपने जो है वो चेहरे को जो है वो कवर कर लें, लेकिन ये कपड़े आपने क्यों पहने हुए हैं, ठीक है ना, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ना, कि दूसरों की नजरें आपकी तरफ यानी घूमे फिरे आपकी तरफ, ठीक है ना, तो इससे अल्लाह ताला ने मना किया है, इससे अल्लाह ताला ने मना किया है। तो पर्दा ये नहीं होता कि या तो काला बुरका पहन लिया और चेहरा खुला छोड़ दिया, ये भी पर्दा नहीं है, क्योंकि इन औरत का चेहरा भी जो है ना ये उसकी असल खूबसूरती होती है, बाकी तो उसकी पूरी की पूरी बदन जो है वो हर औरत का बदन और उसका औरत उसका बदन जो है वो कोई खास फर्क नहीं होता, बस एक जैसे ही होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि तुम अगर बाहर से किसी को देख करके आओ तो अपनी बीवी के पास जाओ, क्योंकि जो बाहर है वही तुम्हारी बीवी के पास भी है, क्या सारी औरतों के चेहरे एक जैसे होते हैं, चेहरे तो एक जैसे नहीं होते, बाकी बदन एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो चेहरे के अंदर भी अट्रैक्शन है, चाहे उसके ऊपर आप जो है वो रंग बिरंगे पेंट फेस पेंटिंग करें या ना करें, फेस पेंटिंग कोई नहीं करता चेहरे के ऊपर सवाए पागलों के, ठीक है, तो चेहरा खुद जो है ना वो एक पेंट है, खुद जो है वो एक अट्रैक्शन है, इसी वजह से चेहरे को छुपाना। और दूसरी चीज ये कि बाकी बदन जो है उसके ऊपर आपने रंग बिरंगे जोड़े पहने हुए हैं, तो उनके जरिए से जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करना, तो पर्दे का जो हुक्म है ना वो इन सारी चीजों को छुपाने का हुक्म है, ठीक है, तो बुरका पहनने के बाद चेहरा खोल दिया, पर्दा नहीं किया, क्योंकि चेहरे के अंदर तो अट्रैक्शन थी, चेहरा तो यूनिक होता है हर इंसान का, ठीक है, और या ये कि आपने चेहरा तो छुपा लिया लेकिन बाकी जो आपका बदन है वो रंग बिरंगे कपड़ों पर में मलबूस है, तो भी पर्दा नहीं हुआ, यानी अल्लाह का हुक्म बेसिकली नहीं पूरा किया आपने। अब कर लें जो करना है, दूसरों का हुक्म पूरा करते रहे तो फिर आपकी मर्जी है, कयामत में उन्हीं से अजर ले लीजिएगा। तो कम अहलकना मिनल कुरूनी मिन बादे नूह, हमने कितने ही कुरून जो है ना वो नूह अलैहिस्सलाम के बाद हलाक कर दिए। वकफा बे रब्बिक, और काफी है तेरा रब, तुम्हारा रब, रब्बिका, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि आपका रब जो है ना वो काफी है, बेदनूबे इबादी, अपने बंदों, इबाद अपने बंदे, ठीक है, इबाद ही अल्लाह के बंदे, बेजुनूब उनके जो जुनूब हैं, उनके जो जम्ब हैं, जम्ब गुनाह का एक लफ्ज जो है वो गुनाह के लिए जम्ब इस्तेमाल होता है, एक इस्तेमाल होता है जुल्म, जुल्म भी गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, और इसम भी गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, इसम तीन नुकतों वाला सा के साथ, ठीक है, और जम्ब भी इस्तेमाल होता है, तो तुम्हारा रब जो है ना वो अपने बंदों के जुनूब के लिए काफी है, खबीरम बसीरन, तमाम खबर रखने वाला और तमाम देखने वाला, ठीक है, मौलवी साहब को देखने की जरूरत नहीं है, मौलवी साहब तुम्हारा गुनाह देखें ना देखें उससे फर्क नहीं पड़ता, मौलवी साहब ने कब्र में तुम्हारा हिसाब नहीं करना है, ठीक है ना। पीर साहब ने, शेख साहब ने कयामत के दिन तुम्हारा, तुमसे सवाल जवाब नहीं करना है। तो जब सवाल जवाब ही कोई नहीं करना, जब तुम्हें देखना ही नहीं, तो फिर जब तुमसे पूछना ही नहीं, ठीक है, तो उनकी खबर होना ना होना उससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, ठीक है ना, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा रब सब कुछ देख रहा है, तुम्हारा रब सब कुछ जानता है तुम्हारे बारे में, और सवाल भी उसी ने करना है तुमसे, हिसाब भी उसी ने करना है तुमसे, ठीक है। अब ये बजाहिर तो हम बचपन से सारे पैदाइशी मुसलमान ही हैं तकरीबन यहाँ पे मेरे ख्याल में, सही है। किसको नहीं पता ये वाली बात, किसको नहीं पता, पता है भाई, सबको पता है, या किसी को नहीं भी पता थी ये वाली बात कि पीर साहब मुझे नहीं देख सकते लेकिन अल्लाह ताला मुझे देख सकता है, सबको पता है ना। लेकिन हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारे जो एक्शंस होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि पीर साहब जो है ना वही खुदा है, और पीर साहब के सामने मेरा इंप्रेशन अच्छा रहे बुरा ना बन जाए कहीं, पीर साहब के सामने मेरा इंप्रेशन अच्छा हो बुरा नहीं बन जाना चाहिए। तो इस वजह से पीर साहब के, या तो मैं खुद अच्छा बन के अब खुद झूठ बोलूंगी, ठीक है ना, ताकि जो है ना वो पीर साहब कहीं मेरे बारे में बुरा ना सोचना समझना शुरू हो जाए, ठीक है। या ये कि किसी दूसरे ने अगर मेरे बारे में जाके कुछ बता दिया पीर साहब को, तो मैं उसकी, यानी मैं जान को आ जाऊंगी उसकी, ठीक है ना, मैं उसका जीना यानी बर्बाद कर दूंगी, ठीक है, कि मजाल कैसे हुई आपकी, ठीक है, आपने क्या कर दिया ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चाहे हम समझें या ना समझें, चाहे हम माने या ना माने, इसका मतलब ये है कि हमने पीर साहब को तो खुदा बनाया हुआ है, और खुदा को क्या बनाया हुआ है, पीर साहब को तो हमने खुदा बना दिया, लेकिन खुदा को हमने क्या बना दिया, डोंट केयर, खुदा को हमने बना दिया आई डोंट केयर, ये बना दिया हमने खुदा को। फिर उसके बाद जब हम मरने के लिए जाएंगे, तो वहां पे पीर साहब को तलाश करते फिरेंगे, कब्र के अंदर पीर साहब तो नजर नहीं आने वाले वहां पर, शेख साहब तो वहां पे नजर नहीं आने वाले कब्र के अंदर, और कयामत के दिन भी फिर वही होगा कि वो शेख साहब को तलाश करेंगे, पता नहीं वहां पे भी नजर आएंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम अल्लाह ताला से जो है वो बेहतरीन की, पता नहीं, उम्मीद रख रहे हैं या क्या रख रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है कि मैं जब से सुनी हूं पर्दे का, मैं कोशिश करती हूं पर बहुत बार कर नहीं पाती, घर में ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से, ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से पर्दा नहीं कर पाती। तो ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहते हुए पर्दा करना जो है ना, ये थोड़ा सा आप सीख लें उन खवातीन से कि जिन्होंने पहले ज्वाइंट फैमिली के अंदर पर्दा किया हुआ है या अभी भी करती हैं, ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा टिप्स हासिल कर लें, तो आपके लिए भी इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, और अल्लाह ताला से बहुत मदद मांगे, अल्लाह ताला से बहुत मदद मांगें। सबसे पहले अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है, तब इंसान के लिए आसान होता है, और अल्लाह की मदद जो है ना, वो जब इंसान उसको दिल से मांगता है और टूट के मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो अपने बंदों को फिर मायूस नहीं करता है, ठीक है। तो पहले तो टूट के मांगे, टूट के मांगने का मतलब पता है, टूट के मांगे, ठीक है, और फिर इल्म भी हासिल करें इसके ऊपर। एक बड़ी चादर का पर्दा कम अज कम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर लेना होता है, वो चादर जो कि अट्रैक्टिव ना हो, शलवार कुर्ते की तरह जो है ना वो उसके अंदर कलर्स ना हो, बल्कि एक सिंपल सी एक चादर हो, ठीक है। तो जब नामहरमों का वास्ता पड़ता हो या सामने से गुजर होता हो, ठीक है, या उनके साथ जो है वो कुछ घरों में मुसीबत, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ठीक है, मर्दों को हिदायत दे कि वो चाहते हैं कि सब मिल करके एक साथ खाना खाएं, और सब जो है ना वो आपस में हल्ला गुल्ला करें, और मोहब्बत और प्यार हो उनके दरमियान, अल्लाह उनको अकल सलीम अता फरमाए कि मोहब्बत और प्यार तुम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करके नहीं पैदा कर सकते हो, ठीक है ना। ये मोहब्बत और प्यार जो है ना, ये अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ही दिलों के अंदर पैदा करते हैं, और अल्लाह ही दिलों के अंदर से निकाल देते हैं। हम अल्लाह को नाराज करके कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, कौन सी मोहब्बत चाह रहे हैं, ठीक है। बस होता यही है कि अपने नफ्स की मोहब्बत तो पैदा हो रही होती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से हम महरूम हो रहे होते हैं, ठीक है, और हमारा, हम अपने लिए जो है ना वो बहुत बड़ा गड़ा खोद रहे होते हैं, हमें उसका अंदाजा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे घरानों के अंदर जो है ना, अब औरत मजबूर है, वो इस बुनियाद के ऊपर तलाक नहीं दे सकती, इस बुनियाद के ऊपर वो घर छोड़ के नहीं जा सकती। हमारे मशायख और उलमा जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो इस बात पे जो है ना वो तलाक का मुतालबा नहीं करें, ठीक है। तो अब वो क्या करें, बड़ी चादर का पर्दा करें, ठीक है, अपने आप को इस तरीके से ढाप ढाप करके रखें। और जो गैर महरम मर्द होते हैं घर के अंदर, तो उनके साथ जो है ना, वो एक तो आई कांटेक्ट, ठीक है, बिल्कुल आई कांटेक्ट ना करें, उनको स्ट्रेट देख करके बात ना करें। अगर बात करने की जरूरत पड़ गई है तो सर झुका करके बस अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। और जो है ना, वो बेतकल्लुफी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो यही फिर है, इस औरत का पर्दा होगा और अल्लाह ताला फिर इसको इसी के ऊपर आगे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और मर्दों को अल्लाह ताला से दुआ की हिदायत हिदायत की दुआ करते रहे, ठीक है। बहरहाल, तो ये हो गया। फिर उसके बाद इन आयात का रबते आयात, हजरत ने लिखा है कि पिछली आयात के साथ इनका क्या रब्त बनता है। तो फरमाते हैं कि इससे पहली आयात में इसका बयान था कि हक तआला की आदत यह है कि जब तक किसी कौम के पास अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला की हिदायत ना पहुंच जाए और फिर भी वो अताअत ना करें, उस वक्त तक उन पर अजाब नहीं भेजते। मजकूरा आयात में इसके दूसरे रुख का बयान है, ठीक है। पीछे जो है वो एक रुख का बयान हो चुका था, और अब जो है वो दूसरे रुख का बयान है कि जब किसी कौम के पास रसूल और अल्लाह के पैगाम पहुंच गए और फिर भी उन्होंने सरकशी से काम लिया, तो उस पर अजाब आम भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अजाब आम के लिए जो है ना, वो जो अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत होती है, वो रसूलों का भेजा जाना होता है। बाकी पैगाम जो है ना, वो मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला भेजते हैं, मुख्तलिफ दर्जों में अल्लाह ताला भेजते हैं। किसी के पास थोड़ा पैगाम भेजा, किसी के पास ज्यादा पैगाम भेजा, किसी के पास जो है वो और भी ज्यादा पैगाम भेजा, ठीक है। तो जैसे ये पैगाम जो है ना, ये अल्लाह ताला की नेमत है, ठीक है, हिदायत का पैगाम अल्लाह ताला की नेमत है। तो जिस तरह बाकी नेमतें होती है ना, छोटी बड़ी, उससे बड़ी, उससे भी ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा बड़ी, ठीक है, उसी तरीके से पैगाम की नेमतें भी जो है ना, ये भी किसी के पास छोटा पैगाम आया, किसी के पास उससे बड़ा पैगाम आया, किसी के पास उससे बड़ा पैगाम आ गया, ठीक है। जिसके पास नबी अलैहिस्सलाम पहुंच गए तो उसके पास सबसे बड़ा पैगाम पहुंच गया, सबसे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैगाम पहुंच गया, ठीक है, सबसे बड़ी नेमत। और जिसके पास नबी नहीं पहुंचे बल्कि कोई वली पहुंचे, उसके पास उनसे कम दर्जे का पैगाम पहुंचा, ठीक है। फिर किसी के पास जो है वो आम आदमी पैगाम लेकर के चला गया, उसके पास वली से भी कम दर्जे का पैगाम पहुंचा, क्योंकि वो कम कम नेमत थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला के यहाँ फिर अजर भी नेमत के हिसाब से, अगर उसका शुक्र अदा किया जाए तो जितनी बड़ी नेमत का शुक्र अदा किया है उतना बड़ा अजर मिलेगा, और जितनी बड़ी नेमत का कुफ्र किया गया है उतना ही बड़ा जो है वो अजाब होगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ लें, यही है सिंपल। अच्छा, आगे खुलासे तफसीर में बयान फरमाते हैं कि जब हम किसी बस्ती को और जब हम किसी बस्ती को जो अपने कुफर व नाफरमानी की वजह से बमुक्तज़ाए हिकमत इलाहिया, अल्लाह ताला की हिकमत के मुनासबत से या उसके तकाजे के तौर पर, ठीक है, यानी जब आप कोई काम करते हैं ना, तो फिर उसका कोई तकाजा होता है, उसका कोई डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की हिकमत की भी कुछ तकाजे हैं, तो उन तकाजों की वजह से हलाक करने के काबिल हो, ठीक है, जो अपने कुफ्र नाफरमानी की वजह से बमुक्तज़ाए हिकमत इलाहिया हलाक करने के काबिल हो, हलाक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको बेसत रसूल से पहले हलाक नहीं करते, बल्कि पहले किसी रसूल की मारिफत उस बस्ती के खुश ऐश यानी अमीर व रईस लोगों को खुसूसन और दूसरे आवाम को अमूमन ईमान व अताअत का हुक्म देते हैं, ठीक है, ईमान व अताअत का हुक्म देते हैं। फिर जब वो लोग कहना नहीं मानते बल्कि वहां शरारत मचाते हैं, तब उन पर हुज्जत तमाम हो जाती है, ठीक है। यानी नबी आते हैं, रसूल आते हैं, और वो उस बस्ती के जो है ना, वो जो 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 लोग होते हैं, खुसूसन जो अमीर कबीर और सरदार लोग होते हैं, तो उनको खुसूसन मैसेज देते हैं, और जो अवाम उन्नास होते हैं उनको अमूमन मैसेज देते हैं, ठीक है। जैसे कुदरतन हमारे यहाँ जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक क्लास होती है, ठीक है ना, आपने से उम्मीद है कि सारी उसमें शिरकत करते होंगे या आपके बच्चे शिरकत करते होंगे, क्योंकि बच्चों बड़ों दोनों के लिए एक तरह की क्लास है, ठीक है। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, शाहान शाहाने अकवाम को नबी अलैहिस्सलाम के खतूत, आप ने खतूत लिखे बादशाहों को, ठीक है। तो वो जो खत लिखा था वो कैसर रोम के पास गया, वो किसरा अजीम फारस के पास गया, हबशी हबशा के नजाशी के पास गया, मकूक से मिस्र के पास गया, ठीक है ना। मिस्र की पूरी अवाम के पास तो नहीं गया ना, रोम के सारे अवाम के पास तो वो खत नहीं गया ना, वो तो एक खत था बादशाह के पास। उस जमाने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था कि सारे लोगों के पास पहुंच जाता वो खत वायरल होकर के, ठीक है। तो उनको खसूसी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने एड्रेस किया, और उनके थ्रू जो है ना वो उनके अवाम नास को भी एड्रेस किया, ठीक है। क्योंकि बादशाह से ये कहा कि तुम जो है ना वो अगर ईमान ले आओगे तो तुम्हारी कौम तुम्हारी इत्तबा करेगी और वो भी मुसलमान हो जाएगी, और अगर तुम ईमान नहीं लेकर के आओगे तो सारी कौम का वबाल जो है वो तुम्हारे सर पर होगा, तुम्हारी गर्दन पर होगा, ठीक है। और यही मामला इवन मक्का मुकरमा के अंदर भी यही था कि जो यानी नबी अलैहिस्सलाम जो कुफारे ये जो कुरैश के सरदार थे ना तो उनके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहे होते थे, और अवामनाथ जो है वो उनके ऊपर रिलेटिवली स्पीकिंग कम टाइम लगा रहे होते थे। हत्ता के सूरह अबसा वतवल्ला का तो कॉन्टेक्स्ट ही यही है, नबी अलैहिस्सलाम सरदारों से बात कर रहे थे कि एक नाबीना साहबी आ गए, ठीक है। तो नाबीना साहबी के आने के और बात करने के ऊपर ना नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ी नागवारी हुई कि भाई सरदार अगर ईमान लेकर के आ जाएंगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का एक हिकमत है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानी माशरे को बनाया है, अन्नासु अला दीने मुलूकिहिम, के इंसान जो होते हैं ना वो अपने बादशाहों के ही दीन के ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा तो उमूम यानी ईमान व अतात का हुक्म देते हैं, फिर जब वो लोग कहना नहीं मानते तो बल्कि वहां पर शरारत मचाते हैं, फसकू शरारत मचाना, ऐसे हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने इसका तर्जुमा किया, तब उन पर हुज्जत तमाम हो जाती है, फिर उस बस्ती को तबाह व गारत कर डालते हैं। और इसी आदत के मुवाफिक हमने बहुत सी उम्मतों को नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद उनके कुफ्र मासियत के सबब हलाक किया है, जैसे आद व समूद वगैरह, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का गर्क होकर हलाक होना मशहूर व मारूफ है। इसलिए मिम बाद नूहन पर इक्तफा किया गया, खुद कौम नूह का जिक्र नहीं किया, ठीक है। यानी यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद वाली कौमों का जिक्र हो रहा है, तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम का क्यों नहीं जिक्र किया, ठीक है। आगे आ रहा है वो उसका जवाब, तो फरमाते हैं कि ये भी कहा जा सकता है कि शुरू सूरत में आयत जुर्रियत मन हमलना मानू में लफ्ज हमलना से तूफान नूह की तरफ इशारा मौजूद है, ठीक है। यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर तूफान जो अजाब आया था ना उसका जिक्र पीछे कर दिया था, इस वजह से यहाँ पर उनके बाद वाली अकवाम का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कौम नूह की हलाकत का बयान करार देकर यहाँ मा बाद नूह यानी नूह के बाद जो आए थे उनका जिक्र फरमाया गया, और आपका रब अपने बंदों के गुनाहों का जानने वाला देखने वाला काफी है, सफिशियंट है। तो जैसा किसी कौम का गुनाह होता है वैसी सजा देता है, ठीक है। अल्लाह ताला को गुनाह के होने का भी पता है और गुनाह की किस्म का भी पता है, ठीक है। तो जिस किस्म का गुनाह होता है और जिस शिद्दत का गुनाह होता है उसी हिसाब से अल्लाह ताला अजाब भी देते हैं, अल जजा उ मिन जिंसिल अमल। इस उसूल को कहा जाता है अरबी जुबान में अल जजा, यानी जो जजा है जो रिवॉर्ड है या जो जो पनिशमेंट है दोनों के लिए जजा का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, मिन जिंसिल अमल, जैसा अमल की जिंस होगी वैसी ही जजा होगी, अल जजा उ मिन जिंसिल अमल, ठीक है। मारूफ मसाइल पढ़ना शुरू कर लेते हैं, लेकिन बस 2 मिनट के लिए, आज ब्रेक लेना चाह रहे हैं, इसको जरा पॉज कर दीजिएगा। एक शुबा और उसका जवाब, अल्फाज आयत इजा अरदना और उसके बाद अमरना के जाहिर से ये शुबो हो सकता है कि उन लोगों का हलाक करना ही मकसूद खुदाबंदी था, ठीक है। जब हमने इरादा किया कि उनको हलाक करें तो अपेरेंटली आउटवर्डली क्या समझ में आ रहा है कि गोया के अल्लाह ताला ने पहले से इरादा किया हुआ था कि इनको हलाक करना है ना, अल्फाज से तो ऐसे ही लगता है ना। इसलिए उनको अव्वल बजरिए अंबिया ईमान व अताअत का हुक्म देना, फिर उनके फिस्क व फुजूर को अजाब का सबब बनाना, ये सब अल्लाह ताला ही की तरफ से हुआ। तो इस सूरत में तो ये बेचारे माजूर व मजबूर हुए, है ना भाई, जब पहले से फैसला हुआ हुआ है इनके बारे में, पहले से जो है वो अल्लाह ताला का इरादा था, फैसला हुआ हुआ है का मतलब यहाँ पर ये ये है कि अल्लाह ताला का इरादा था किसी को हलाक करना। तो अब अगर ये नेक ना बन सके और गुनाहों के ऊपर चले गए, तो ये तो मजबूर और माजूर हुए ना, क्योंकि उनके ऊपर तो फोर्स किया जा रहा है इरादे को। इंसानों इंसानों के मामले में तो ऐसे ही होता है ना, इंसानी दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना कि जब आप किसी को मारने का इरादा कर लेते हैं, अब आप जो है वो उसके सामने क्या कहते हैं, कोई बेट रखें, कोई जो है वो खुराक रखें, ताकि वो जो है वो उसको जब खाने के लिए आएगी तो हम उसको पकड़ लेंगे, उसको मार देंगे, ठीक है ना। तो आपने तो पहले से उसको मारने का इरादा किया हुआ है, अब जब आपने उसके सामने कोई मिठाई रखी और वो मिठाई खाने के लिए आ रहा है, तो फिर उसका क्या कसूर? वो तो कोई भी शख्स के सामने आप मिठाई रखेंगे, है ना, मीठों को मीठे को पसंद करने वाला अगर वो होगा तो वो आएगा, ठीक है। लेकिन मीठे को पसंद करने वाला, ये अल्लाह ताला ने जुमला भी ऐसा कहलवा दिया, ठीक है। बहरहाल किसी को समझ में आया नहीं तो आगे पढ़ लेते हैं। इन्होंने काफी अच्छे से इसको समझाया भाई है कि ये इस सूरत में तो ये बेचारे माजूर व मजबूर हुए, ठीक है। इसके जवाब की तरफ तर्जुमा और खुलासे तफसीर के जिमन में ये इशारा आ चुका है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्लो इख्तियार दिया और अजाब व सवाब के रास्ते मुतय्यन कर दिए। जब कोई अपने इख्तियार से अजाब ही के काम का अजम करे तो आदतुल्ला ये है कि वो इसी अजाब के असबाब मुहैया कर देते हैं, ठीक है। असबाब के अजाब क्या होते हैं, ठीक है, असबाब के सॉरी अजाब के असबाब क्या होते हैं, आज क्या उल्टा उल्टी बात ज्यादा हो रही है। अजाब के असबाब क्या होते हैं कि ऐसी अट्रैक्टिव चीजें उनके सामने आ जाती हैं कि जिनसे जो है ना वो एक आम इंसान का बचना मुमकिन ही नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर है तो औरतों की क्लास, लेकिन ये मसला मर्दों का ज्यादा है, और आपको अच्छी तरह से बात पता है कि मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने शहवत रखी है, ठीक है, औरत की तरफ। अब अगर उसके सामने जो है ना वो एक बेलिबास औरत आ जाएगी ना, अब उसके लिए बचना जो है ना ये मुमकिन नहीं है, ठीक है ना, इल्ला ये कि वो कोई अल्लाह का वली कामिल हो या अल्लाह का नबी हो, ठीक है। बल्कि सूरह यूसुफ की तफसीर हमारी दूसरी क्लास के अंदर चल रही है, सूरह यूसुफ के अंदर तो यूसुफ अलैहि सलाम का वाकया है कि जब जुलैखा जो है ना वो आ गई थी ना यूसुफ अलैहि सलाम के सामने इस तरीके से, पता नहीं बेलिबास होके आई थी या जो है वो कुछ इस किस्म की चीज पहन करके आई थी, तो वहम्मा बिहा, कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि यूसुफ अलैहि सलाम के दिल में एक तरफ पैदा हुई थी जिसको तबई कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ गई थी, बुरहान रब्बी अल्लाह ताला की तरफ से आ गई थी, यूसुफ अलैहि सलाम जो है वो उस गुनाह से बच गए थे, ठीक है। उसकी तफसीर उठा के देख लें, उसके अंदर मजीद आपको मिल जाएगी तफसीर। तो यानी ऐसी जब कोई चीज सामने आ जाए बचना मुश्किल है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। इसको कहते हैं अजाब के असबाब, ठीक है। ऐसे गुनाह की तरफ जो है ना वो धकेल दिया जाता है बंदा, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत भी नहीं आती, ठीक है। तो फरमाया कि इसी अजाब के असबाब मुहैया कर देते हैं। अच्छा, कुदरतन अभी चंद दिन पहले जो वो कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे, तो वहां पर किसी साथी ने सवाल किया कि बहुत सारे लोग जो है ना वो आजकल कनाडा और अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से निकलने की और वहां पे जाने की बातें कर रहे हैं, और हर कोई जो है ना वो इसी क्या कहते हैं तलाश में है कि बस उसको ऑप्शन मिले कैनेडियन इमिग्रेशन का, यूएस इमिग्रेशन का। और यूएस इमिग्रेशन के लिए तो आपने शायद सुना हो क्या क्या हरकतें हो रही हैं उसके लिए, ठीक है। लोग जो है वो ट्रेनों के ऊपर चिपक चिपक करके जो है ना वो अमेरिका के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्रों के अंदर जो है ना वो तैर तैर करके अमेरिका के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वाले मुल्कों का भी, तो अब उनका क्या किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि भाई वहां पे जाओगे तो वहां पर जाकर के जो है ना वो ईमान की सलामती जो है वो बहुत मुश्किल काम है। अपने ईमान की सलामती मुश्किल है और अगली नस्ल के ईमान की सलामती तो तकरीबन नामुमकिन हो जाती है, ठीक है ना, या उसके बाद वाली नस्ल की ईमान की सलामती तो भूल जाए आप, ठीक है। तो अब उनको कैसे समझाया जाए, तो इस हाजिज ने ना उसके ऊपर उनको यही जवाब दिया कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ना पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है डॉलर जो है वो 300 से ज्यादा का हो गया और हर चीज की महंगाई इतनी ज्यादा और बहुत ही बुरे हालात इस वक्त फाइनेंशियली स्पीकिंग, ठीक है, बाकी बुरे तो पहले भी थे लेकिन इस वक्त जो है ना वो ये वाली है। तो इस सूरत के अंदर जो है ना वो मेरे अपने समझ में नहीं आता कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं, तो मैंने यही जवाब दिया कि सिर्फ वही बचता है, सिर्फ वही बचता है जिसका कि अल्लाह वालों के साथ खसूसी ताल्लुक होता है, उसी को आप समझा सकते हैं। जिसने पहले से अल्लाह वालों के साथ खसूसी ताल्लुक बना के रखा हुआ था ना, उसको आप समझा सकते हैं, बाकी किसी को आप समझा भी नहीं सकते। क्या कहेंगे, खाने पीने के लिए नहीं है, घर का किराया नहीं हो सकता, और जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं हो सकता, और जो है वो नौकरी नहीं है, और एक से एक लोगों के बुरे हालात चल रहे हैं। अब आप उसको क्या कहे, मतलब कोई दीन वाला होगा, ताल्लुक वाला होगा, उसी को आप कहेंगे ना कि भाई अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, अल्लाह ताला जो है वो असबाब मुहैया कर देंगे। और हकीकत तो यही है कि जिन लोगों का ऐसा ताल्लुक है ना अल्लाह वालों के साथ, अल्लाह ताला उनको इन्हीं हालात के अंदर मुतमईन रखा हुआ है। इन्हीं हालात के अंदर ऐसे लोग जो है ना, उनके रिस्क का भी इंतजाम हुआ हुआ है और उनके दिल के इत्मीनान का इंतजाम भी हुआ हुआ है। लेकिन जिन्होंने या तो दीन को बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है, या उन्होंने अपनी मन मर्जी का दीन अपनाया हुआ है। मन मर्जी का दीन क्या होता है? मन मर्जी का दीन जो के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के तरीके पर ना हो, उस दीन को मन मर्जी का दीन कहते हैं। यानी किताबें पढ़ पढ़ करके, नफलें कर करके, और अपने हिसाब से जो है ना वो दीन को समझ करके, बयानात से या किताबों से बस कर रहे हैं जो जो भी कर रहे हैं। सहाबा के मॉडल के ऊपर नहीं है ये लोग, ठीक है? तो ऐसे लोगों को नहीं समझाया जा सकता इस वक्त, ठीक है? क्योंकि इतने गुनाह के असबाब जो है ना, वो इस तरीके से मुसल्लत कर दिए गए कि अब बचना मुश्किल है, ठीक है? आपने फरमाया था कि दो किस्म के लोग बचेंगे, एक वो जो अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक में होगा, तौबा करेगा, और दूसरे वो जिनको अल्लाह ने छूट दे दी है। दो किस्म के लोग बचेंगे, जो अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक में होगा ना, वो तो आखिरत में भी बचेगा और दुनिया में भी बचेगा, और दूसरा जिनको अल्लाह ने छूट दे दी हो, तो ये छूट दे देने से आपकी यहाँ मुराद है, ये छूट दे देना तो बहुत ही बुरे माने में इस्तेमाल होता है ना, ढील दे देना, ठीक है? तो ऐसा शख्स जो है ना, वो सिर्फ दुनियावी एतबार से बचेगा इस महंगाई से, ठीक है? इस महंगाई से सिर्फ दुनियावी एतबार से बचेगा, बाकी आखिरत में तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक है? तो ये हालात हमारे सामने इस वक्त हो रहे हैं ना, ये सब मुतरफिया वाले हालात भी हमें नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये वाले हालात भी हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो फरमाया कि जब कोई अपने इख्तियार से अजाब ही के काम का अजम करे, तो आदतुल्ला ये है कि वो इसी अजाब के असबाब मुहैया कर देते हैं। तो असली सबब अजाब का खुद उनका अजम और कसद है, कुफ्र मासियत का। यानी उनके उनका इरादा होता है अल्लाह की नाफरमानी करने का। कुफ्र मासियत का मतलब क्या होता है? अल्लाह की नाफरमानी, ठीक है? तो उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी का अपने दिल के अंदर इरादा किया हुआ होता है, ना कि महज इरादा, इसलिए वो माजूर नहीं हो सकते, ठीक है? यानी सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह का इरादा जो है ना, वो उनके अजाब होने की सबब बन गया, नहीं, उनके दिल का अपना इरादा जो है ना, वो सबब बना अल्लाह के इरादे का, और अल्लाह का इरादा सबब बना अजाब का, ठीक है? तो ब्लेम किधर आता है? ब्लेम हमारे ऊपर आता है, ब्लेम बंदों के ऊपर आता है। अच्छा, बाकी है कि अल्लाह ताला को तो पहले से पता है, ठीक है? अल्लाह ताला को तो पहले से पता है कि किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना, इसी को तो तकदीर कहते हैं। तो अल्लाह को पता जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को फोर्स नहीं करते कि तुम जो है ना, वो तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं, अब तुम जो है वो बुराई वाला ऑप्शन इख्तियार करो। अल्लाह ताला किसी को फोर्स नहीं करते, अल्लाह ताला ने ये इख्तियार इंसान को दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला अपने अजली इल्म और अबदी इल्म की बुनियाद पर जानते हैं कि इसने क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है? जैसे आपका बच्चा जो है, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो कि आपके जहन में भी आ सकता है और आपके बच्चे के जहन में भी आ सकता है, इस वजह से इस बुनियादी सवाल को बार बार एड्रेस करना जो है वो जरूरी होता है, ठीक है? अभी चंद दिन पहले ही मुझसे किसी बच्चे ने ये सवाल दोबारा किया, ठीक है, कि जब जो है वो, बल्कि किसी बच्चे ने तो क्या, मेरे अपने बच्चे ने सवाल किया ये, ठीक है, कि जब अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ यानी जानते हैं और सब कुछ पहले से अल्लाह ताला ने फैसला किया हुआ है, तो फिर इंसान जो है वो उसके उसका क्या गुनाह है, उसकी क्या गलती है, ठीक है? तो भी उसको भी फिर इसी तरीके से समझाए जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को पहले से समझाते आ रहे हैं कि इरादा करना, और मशायख ने इसको अपनी किताबों के अंदर, हमने कोई नई चीज नहीं बयान करी है, पहले से हमारे मशायख ने उसको एड्रेस किया हुआ है कि किसी चीज का इल्म होना ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको फोर्स भी कर रहे हैं। जैसे हमने फिर बच्चों को इसी तरह समझाया कि भाई हम आपको देख रहे हैं ना इतने सालों से, ठीक है, कि आपकी ये मिजाज है, आपकी ये तबीयत है, आपको फलानी चीज पसंद है, आप फलाना काम करते हैं, तो इस वजह से आपके सामने अगर हम मीठा रखें और फीका रखें तो हमें पता है कि आपने जो है वो यानी क्या कहते हैं मीठा पसंद करना है, क्योंकि आप यू हैव अ स्वीट टूथ, ठीक है। लेकिन आपका मीठा पसंद करना का मतलब ये कोई थोड़ी है कि हम आपको पीछे से डंडा दिखा करके, ओ तुमने मीठा पसंद करना है, अगर नहीं किया तो हम तुम्हें मारेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना। पसंद तो आपने अपनी मर्जी से किया, लेकिन हमें आपके बारे में जो इल्म है उसकी बुनियाद पर हमें पहले से पता था कि आपने क्या पसंद करना है। तो भाई उसको भी ये समझाया कि अब्बू तो आपको बस थोड़ा सा जानते हैं, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपकी क्या हर वक्त आपकी क्या हरकतें होती हैं, क्या काम करते हैं, क्या सोचते हैं, इसका तो अब्बू को पता भी नहीं है। लेकिन फिर भी अब्बू को जो पता था कि आपने मीठा पसंद करना है या फीका पसंद करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सब कुछ जानते हैं अपने बंदे के बारे में, और बनाया भी अल्लाह ने, अब्बू ने बेटे को थोड़ी बनाया होता है, अल्लाह ने तो बंदे को बनाया हुआ होता है। तो अल्लाह ताला अगर जानते हैं कि भाई हमने क्या करना है तो इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात हो गई भाई समझ में आने वाली, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से अब्बू फोर्स नहीं कर रहे उसी तरीके से अल्लाह ताला भी फोर्स नहीं कर रहे, तो इस वजह से जो आप कर रहे हैं उसके आप खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इतनी सी एक्सप्लेनेशन जो होती है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी हो जाती है बंदे को समझ दिलाने के लिए, और एक एक बहुत बड़ी गुमराही का सबब बन सकता है अगर ये सवाल सही से जवाब ना दिया जाए इसका, ठीक है। आयत मस्कुरा की एक दूसरी तफसीर लफ्ज, अच्छा ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं माजद के जिनकी आगे की क्लास थी उनसे, क्योंकि ये बड़ा अहम है इस टॉपिक को मुकम्मल समझने के लिए, कि लफ्ज अमरना का मशहूर मफहूम वही है जो ऊपर बयान किया गया है, यानी हुक्म दिया हमने, लेकिन इस आयत में इस लफ्ज की किराअतें मुख्तलिफ हैं। एक किराअत है जिसको अबू उस्मान नहदी, अबू रजा, अबुल आलिया और मुजाहिद ने इख्तियार किया है, ये लफ्ज बेतशदीद मीम आया है, ठीक है, यानी मीम के ऊपर तशदीद यानी अमरना, ठीक है, यानी कुरान मजीद जो है वो कई किरातों के अंदर नाजिल हुआ है ना, ठीक है, 16 से लेके 20 किरातों के अंदर कुरान मजीद नाजिल हुआ है, ठीक है, डायलेक्ट्स जिनको कहते हैं, और इन डायलेक्ट्स के साथ साथ इन मेजरली तो उनको डायलेक्ट्स कहते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं ये एक्चुअली हरूफ के डिफरेंसेस भी हैं, और जो है वो यानी एक्चुअली क्या कहते हैं अल्फाज के भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये किरात वाले डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और ये इब्तिदा में जो नुजूल हुआ है कुरान मजीद का ये उसी वक्त से है, ये बाद में पैदा नहीं किया गया, बाद में किसी ने पैदा नहीं किया कि कुरान मजीद में तहरीफ कर दी, कुरान मजीद को बदल दिया, नहीं, ये तो बिल्कुल नुजूल के वक्त से ऐसा ही है, ठीक है। अलबत्ता बाद में इन जो 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 किरातें थी उनको फिर एक मसहफ के अंदर और एक किरात के ऊपर पूरी उम्मत को जो है वो इकट्ठा कर दिया गया उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में, ठीक है। तो पहले जो थे ना वो इख्तलाफात थे, बाद में इख्तलाफात खत्म हो गए किरात के इख्तलाफात, ठीक है। तो एक जो किरात है इसी इस लफ्ज की वो अमरना भी है, ठीक है। तो अमरना जिसके मानी ये होते हैं कि हमने अमीर व हाकिम बना दिया, खुश ऐश सरमायादार लोगों को जो फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गए और सब कौम के लिए अजाब का सबब बन गए, ठीक है, यानी हमने ऐसे लोगों को जो है ना उस कौम का सरदार बना दिया। अब एक शख्स जो होता है वो अमीर कबीर तो होता है, लेकिन वो कौम का सरदार तो नहीं होता ना, हर अमीर कबीर शख्स जो है वो सरदार तो नहीं होता ना, ठीक है। तो हमने किन लोगों को, किन अमीर कबीर लोगों को उस कौम का सरदार बना दिया जो कि फिस्क व फुजूर में मुब्तला थे, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक हमारे मुल्क के अंदर जो है पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और मुल्क के अंदर एक बहुत नेक आदमी है लेकिन बहुत अमीर कबीर है, वो इलेक्शन में खड़ा होता है या सिलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है ना। वैसे तो हमारे यहाँ सिलेक्शन ही होता है, इलेक्शन तो बेवकूफों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा जाता है उसको, ठीक है, वरना असल में तो सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्ट करने वालों ने किसी नेक आदमी को सिलेक्ट करके जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, या प्रेसिडेंट बना दिया नेक आदमी को, जो कि अमीर कबीर था, जिसके फैक्ट्रियां थी, जिसके जो है ना वो बड़े बड़े जो है वो कारखाने थे और पता नहीं क्या क्या था उसके पास, ठीक है। तो अब ये कौम जो है इसका नेक आदमी जो है वो सरदार बन गया, ठीक है, तो अब बाकी कौम के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत ही बुरा इंसान जो था वो था कौम का सरदार, वो था नहीं, यानी बहुत ही अमीर कबीर था और बहुत जो है ना वो यानी हीरो किस्म का इंसान था और बड़ा जो है वो बड़ा ग्लैमरस किस्म का इंसान था, लेकिन नेकी से दूर था और फिस्क फजूर की जिंदगी गुजार रहा था। ठीक है, तो सिलेक्शन करने वालों ने उसको उठा करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया या उसको उठा करके प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, तो अब जो बाकी कौम होगी ना उसके ऊपर इसकी आदात और अतवार का असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये अम्बरना का फिर ये हुक्म, ये मतलब ये मफहूम बनता है। और हजरत अली व इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु की एक क़िरात में ये लफ्ज अम्बरना पढ़ा गया, जिसकी तफसीर उन्हीं हजरात से अक्सर ना नकल की गई है। ठीक है, हजरत अली रतान और इब्ने अब्बास ने अम्बरना की जो तफसीर बयान करी ना वो अक्सर ना, ठीक है, क्या मतलब कि हमने अक्सर कर दिया, यानी जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब भेजते हैं तो उसकी इब्तदाई अलामत ये होती है कि उस कौम में खुश ऐश सरमायादार लोगों की कसरत कर दी जाती है और वो अपने फिस्क व फुजूर के जरिए पूरी कौम को अजाब में मुब्तला करने का सबब बन जाते हैं। ठीक है, कसरत कर दी जाती है, सोने की कान निकलाई मुल्क के अंदर, ठीक है ना, और सोने की कान जो है वो ये नहीं कि सारे अवाम नास के अंदर इक्वली डिवाइड कर दी गई, बल्कि उसके जो ओनर्स थे, जो चौधरी थे, जो 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 ठेकेदार थे, जो इस किस्म के लोग थे, बडेरे थे, तो सोने की कान उनके जमीन के अंदर निकल आई। अब जो है ना वो यानी बहुत ज्यादा अमीर हो गए, पहले थोड़े से अमीर थे, अब बहुत ज्यादा अमीर हो गए, उनकी नस्लें जो है वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई। ठीक है, तो कसरत कर दी हमने अमीरों की। ठीक है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, माफ़ फरमाए हमारी गलतियों कोताहियों को। हालात तो सारे के सारे इस वक्त ऐसे ही नजर आते हैं। ठीक है, तो कम से कम इनफरादी तौर पर इंसान जो है ना वो तौबा करके अपने आप को बचाए। ठीक है, पूरी कौम का सुधरना और सब लोगों का ठीक हो जाना ये तो वैसे भी पहले भी कभी नहीं हुआ था और अब तो ये और भी ज्यादा मुश्किल। ठीक है, क्योंकि हालात बिल्कुल वही अजाब वाले हालात अल्लाह ताला ने दिखाए हुए हैं इस दुनिया में ना, तो भाई सारी दुनिया अजाब का शिकार हो रही हो, अपने आप को तो हमने तो अपने आप को बचाना है ना। ठीक है, ये तो नहीं कि सारी दुनिया तो सभी सभी जहन्नुम में जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी, ठीक है ना, सभी जहन्नुम में जा रहे हैं तो फिर मेरा बच्चा क्यों ना जाए भाई, वो ही विल फील लेफ्ट आउट। कुछ लोग ऐसे भी तो कहते हैं ना, आई डोंट वॉन्ट माई किड टू फील लेफ्ट आउट, यानी सारे जहन्नुम में जा रहे हैं तो मेरा बच्चा क्यों ना जाए जहन्नुम में। ठीक है, अच्छा कुरान मजीद ने तो जहन्नुम के जो तरीके बताए हुए हैं तो मेरा बच्चा और सारी कौम उसी के ऊपर अमल कर रही है, लेकिन बस ना अपने आप को धोखा देने के लिए कह देते हैं कि नहीं, कोई जहन्नुम में कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा जहन्नुम में, सब ठीक है, सब अच्छा है, तो सारे ही लोग जो हैं वो अच्छे जा रहे हैं तो मेरा बच्चा क्यों ना अच्छा जाए, यानी तारीफ ही बदल दी। ठीक है, कुरान को साइड पे किया, कुरान की क्या जरूरत है, खुद ही तारीफ करो, जहन्नुम की तारीफ किया है, जन्नत जन्नत की तारीफ किया है और उनके अमाल की क्या तारीफ है। ठीक है, तो भाई ऐसी गलतियां करेंगे तो सिर्फ हमारा अपना नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।